इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर। मसीह की ईश्वरता, भेड़ और चरवाहे का चित्र। भेड़ और चरवाहे का चित्र यूहन्ना 10 भेड़ और चरवाहे के चित्र के ऊपर आधारित है। चरवाहे के विषय में बोलते हुए यीशु 3 आयत में कहते हैं, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। भेड़ें उसका शब्द सुनती, वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। फिर यह शब्दावली थोड़ी सी 7वीं आयत में बदल जाती है, जहां यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। दूसरे शब्दों में भेड़ जानती है कि वास्तविक चरवाहे नहीं है। फिर से एक बार शब्दावली यूहन्ना 10, 11 और 14 में, जहां पर वह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं उनको जानता हूं और वे मुझे पहचानती हैं और बदल जाती हैं। वह चरवाहा जो यीशु है अपनी भेड़ों को जानता है और उन्हें नाम से जानता है, वह उन्हें बाहर लेकर जाता है। भेड़ें हम हैं और हम चरवाहे को पहचानते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, हम झूठे चरवाहों के पीछे नहीं चलते, हम सच्चे चरवाहे के पीछे चलते हैं। यह जो चित्र है कि यीशु चरवाहा और हम उसकी भेड़ हैं, जो इस अध्याय की पृष्ठभूमि है, जिसको आज सुबह मैं देखना चाहता हूं, जो कि यूहन्ना के 10 अध्याय की 22 आयत से शुरू होता है और हम जहां पर पढ़ते हैं, यरूशलम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़ी की ऋतु थी और यीशु मंदिर में सुलेमान के औसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो साफ साफ कह दे। यह एक ईमानदार प्रश्न नहीं था। शायद सदूकियों की तरह वह भी उनके ऊपर कानूनी दोष लगाना चाहते थे। वह चाहते थे कि वह अपने होठों से यह बोले। इसलिए यीशु, जैसे जितनी बार भी वह कहता था, वह उनके उन्हें पूछने से ज्यादा उत्तर दे देता था। यीशु ने उन्हें कहा, मैंने तुम्हें कहा है परंतु तुम विश्वास नहीं करते हो। यीशु उन्हें बताते हैं कि उसने पहले से उनके प्रश्नों के सीधी रीति से उत्तर दे दिए हैं, वह उनको सुनते नहीं है। जो वह कहता है और जो वह करता है, वह उसके कामों के महत्व को नहीं देख रहे हैं। वास्तव में वह उसके शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु की वह भेड़े नहीं थे। और यह बाइबल की शिक्षा है, जिसे हम चुनाव कहते हैं, जहां पर पिता ने कुछ विशेष भेड़ों को अपना बनाने के लिए चुना है और उन भेड़ों को यीशु को दे देता है और यीशु उन्हें अनंत जीवन देता है। भेड़ें यीशु की आवाज जानती हैं, वह यीशु के पीछे जाती हैं, वह पिता द्वारा दूर नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि पिता से बड़ा कोई और नहीं है। यूहन्ना 10:30, मैं और पिता एक हैं। फिर जहां पर हमें इस महत्वपूर्ण और आवश्यक आयत की पृष्ठभूमि, जो कि पूरे पुराने नियम में है, मिलती है, और वह यूहन्ना 10:30, यदि आपने अपनी बाइबल के ऊपर इसका निशान लगा लिया है तो यही है जिसके ऊपर आपको निशान लगाना चाहिए। यीशु अपने विचार विमर्श को यह कहते हुए समाप्त करते हैं, मैं और पिता एक हैं। और यीशु क्या नहीं कह रहे हैं? यीशु 30 आयत में क्या नहीं कह रहे हैं? यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि वह और उसका पिता एक जैसे लगते हैं। यूनानी भाषा इस बात पर बहुत ही स्पष्ट है, मैं और मेरा पिता एक ही वस्तु हैं। वह यह नहीं कहते हैं, मैं और पिता एक व्यक्ति हैं, वह व्यक्तित्व में भिन्न है। व्यक्ति यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कलीसिया पिछले 2000 वर्षों से इस्तेमाल करती आई है, जब भी वह पिता और पुत्र का विवरण देती है। परंतु जब भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, आप 29 आयत की ओर देखिए, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है। जहां पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं और यीशु यह नहीं कह रहे कि वह और उसका पिता एक समान है। यदि मैं एक और रीति से कहूं तो मैं एक शब्द कहूंगा, परमेश्वर और पिता शब्द को कहूंगा, वह अलग अलग तरह से हैं। यदि हम यह समझने जा रहे हैं कि यीशु क्या कह रहे हैं, यदि हम यह समझने जा रहे हैं कि मसीह की ईश्वरता क्या है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम दो अलग अलग बातों को इकट्ठा ना करें। यीशु परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, परंतु यीशु पिता नहीं है। इसलिए यीशु और पिता एक समान नहीं है। वह यह नहीं कह रहे हैं, वह अलग रीति से कह देते यदि उनका कहने का अर्थ होता। दूसरी बात यह है कि यीशु यह भी नहीं कह रहे हैं कि वह परमेश्वर से कम है। यीशु यह नहीं कह रहे कि वह परमेश्वर से कम स्तर पर है, जो मॉर्मन और जो यहोवा विटनेस वाले कहते हैं, पूरी तरह से गलत है। वह बाइबल के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं। आप तो कि सिर्फ एक ही कार्य करना है कि आप उनके प्रति उत्तर को देखिए। यहूदियों ने क्या किया? यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। क्या उन्होंने कहा कि वही जो तो कही जा रहा था, वह एक विशेष व्यक्ति है, परंतु वह परमेश्वर से थोड़ा कम स्तर का है, इसलिए वो गलत था, और परंतु हम उसे जाने दे सकते हैं। उन्होंने वह किया जो बाइबल निंदा करने के दंड के विषय में मांग करती है। उन्होंने पत्थर उठाए ताकि वह उसे मार दें, और 33 आयत में उन्होंने कहा, भले काम के लिए हम तुम पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, इसलिए कि तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है, जो भी यह पद कहता है मैं और पिता एक हैं, इसका अर्थ है कि यह उसकी ईश्वरता का दावा है। यह दावा था कि यीशु परमेश्वर है, इसलिए वह उसे यह कहने के लिए उसे पत्थर मारने वाले थे। यीशु यह दावा नहीं कर रहा कि वह परमेश्वर से कम है, और लोग जो उसकी भाषा बोलते थे वह उसकी बात को समझ गए। कई बार यीशु पिता और पुत्र की भाषा का इस्तेमाल करता है जबकि वह परमेश्वर का पुत्र है। हम इसके विषय में सोच सकते हैं कि वह इस बात का दावा कर रहा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वह परमेश्वर से कम है, परंतु 36 आयत को देखें कि यीशु उनकी निंदा करने का, जो उसके ऊपर दोष लगा रहा है, उसके विषय में वह कहता है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। दूसरे शब्दों में जब यीशु ने इस बात का दावा किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है, यहूदी समझ गए कि वह परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। यह कहने से यीशु और पिता अलग अलग व्यक्ति हैं, और यह बात यीशु को नीचे स्तर पर नहीं लेकर जाती। जिन लोगों से वह बात कर रहे थे, जिन्होंने इस बात को समझ लिया जब यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, वह बिल्कुल सही रीति से समझ गए कि यीशु परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। इसलिए फिलिपियों 2:16 जैसी आयतें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर पौलुस कहता है, हालांकि यीशु परमेश्वर के स्वरूप में था, फिर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यह शब्द जो जहां पर हम अनुवाद करते हैं स्वरूप होना, यह छोटी नकल को नहीं बताता है, परंतु जब पौलुस फिलिपियों को यह बताता है कि यीशु परमेश्वर के स्वरूप में है, तो इसका अर्थ है कि वह पूर्ण रीति से परमेश्वर जैसा है, उसके विषय में कुछ भी कम नहीं है। यीशु ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि वह परमेश्वर से कम है। वह कभी भी इस बात का दावा नहीं करता कि वह कोई रची हुई वस्तु है, जैसे मॉर्मन लोग और यहोवा विटनेस वाले कहते हैं। वह है यीशु। क्या कह रहा है यीशु? यह बात नहीं कह रहा कि उसका पिता और वह एक समान है, और फिर भी वह कह रहा है कि फिर भी वह यह नहीं कह रहा कि वह पिता से कम है। तो यीशु क्या कह रहा है? यीशु यह कहते हुए कि मैं और मेरा पिता एक हैं, जब पिता और पुत्र दो अलग अलग व्यक्ति हैं, फिर भी वह एक परमेश्वर हैं। यूहन्ना 10:30 पूरे नए नियम में यीशु के ईश्वर होने की सबसे शक्तिशाली पृष्ठी है। इस बात को किसी और तरफ से देखना, एक देखने का अर्थ है दूसरे को देखना, एक को सुनने का अर्थ है दूसरे को सुनना, और पुत्र को महिमा देने का अर्थ है पिता को महिमा देना। फिर से आप इस बदलाव को देख सकते हैं। क्या आपने इस बात को देखा कि उसके हाथ में हम छीने नहीं जा सकते? 28 आयत से शुरू करते हुए, मैं तुम्हें उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी भी नाश ना होंगे, और ना कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन लेगा, जिसका अर्थ है यीशु के हाथ से। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यह एक रहस्य है जिसे हम त्रिएकता कहते हैं, एक शब्द जो नए नियम में लिखा नहीं हुआ है, परंतु यह विचारधारा जो के सामने है, त्रिएकता का रहस्य। त्रिएकता शिक्षा देती है कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर एक है, और सिर्फ एक परमेश्वर है, और हम विश्वास करते हैं इसलिए क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। तीन परमेश्वर नहीं है जो इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, और प्राचीन कलीसिया के द्वारा एक झूठी शिक्षा थी जिसका विरोध किया गया, जिसे ट्राइथिज्म कहते थे। परंतु बाइबल नए नियम और पुराने नियम में यह शिक्षा देती है कि एक ही परमेश्वर है। आप यशाया 45 उसका 5 और 6 पद को लें, जहां यीशु कहता है, मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई दूसरा और ईश्वर नहीं है। सो हम विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है, हम एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं क्योंकि बाइबल हमें शिक्षा देती है। त्रिएकता की शिक्षा की वजह से बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तीन भी हैं। हम विश्वास करते हैं, बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल यह शिक्षा नहीं देती कि परमेश्वर एक है जो तीन तरह से है। आप H2O को जानते होंगे, गैस, तरल, ठोस, कुछ भी हो सकता है। हम ऐसी बातों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, परंतु यह एक झूठी शिक्षा है। इसे मॉडलिज्म कहते हैं और इसे प्राचीन कलीसिया ने खत्म कर दिया था। हम विश्वास नहीं करते कि एक ही परमेश्वर है जो तीन अलग अलग रूपों में है। हम विश्वास करते हैं पिता पूरी तरह से परमेश्वर है। इस बात के ऊपर कलीसिया के इतिहास में कभी भी बहस नहीं हुई है, और फिर भी हम विश्वास करते हैं पुत्र भी पूरी तरह से परमेश्वर है, और फिर भी वह पिता से भिन्न है। मुझे जहां पर इस बात को स्पष्टता से लाना होगा कि हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा भी पूरी तरह से परमेश्वर है, फिर भी वह पिता और पुत्र से भिन्न है। क्या आपको सिरदर्द होना शुरू हो गया? या ठीक है, जब आप ऐसी बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो कि समझ के बाहर हैं, तो अक्सर इसका अंत सिरदर्द में ही होता है। वास्तव में एक बार यह मेरे साथ हुआ था। मेरा एक मित्र था जो सेमिनरी में प्रोफेसर था और जो मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान था। उसने प्योर मैथ में हार्डवेयर की पीएचडी कर रखी थी। जब 21 वर्ष का था उसने ऐसा ही कुछ बेतुका काम भी किया था। एक सेमिनरी का प्रोफेसर चैपल में शिक्षा दे रहा था और वह गिर गया। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वह सिर्फ एक ही बात कह पाया था, परमेश्वर एक है, परमेश्वर तीन है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर तीन है। और उनको वास्तव में वहां आना पड़ा कि उसे पुलपिट से ले जाएं। उसने जीवन में हर एक वस्तु को समझ लिया। यह वह व्यक्ति थे जिसने बाइबल को 5 अनुवादों में याद कर रखा था। प्रत्येक शब्द को जो अंत से समझ से बाहर है, यदि वह इसे नहीं समझ पाया तो मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगा। हमारा विश्वास का वाक्य है परमेश्वर 3 व्यक्तियों में अनंत काल के लिए मौजूद है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। वह 7 और ईश्वरीय पूर्णता में से एक है और तीनों रचे हुए नहीं है, तीनों बनाए गए नहीं है। यह कि पिता पूर्ण रीति से परमेश्वर है, पुत्र पूर्ण रीति से परमेश्वर है, पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से परमेश्वर है। परंतु यह आगे चलता है, लेकिन यह अलग है। सामंजस्य पूर्ण कार्यालयों में क्रियावंत किया जाता है और यहाँ अनुकरण है, यहाँ परत्रिएकता में परतंत्रता है और उनके अलग अलग काम है, परंतु फिर भी एक ही परमेश्वर है। और अंत में सारी मनुष्य भाषा हार जाती है क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई अनुरूपता नहीं है। उस इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी सहायता कर सके कि त्रि एकता को समझ सकें। इसलिए हम ऐसे शब्दों को बनाते हैं और हम विवरण देने की कोशिश करते हैं जिन शब्दों की कोई अनुरूपता नहीं है। हमने त्रि एकता जैसे शब्द बनाए जो कि साधारण लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है थ्रीनेस, या फिर हमने परमेश्वर के 3 व्यक्तियों के विषय में बात करते हैं, परंतु अंत में हमारी भाषा हार जाती है। और ऐसा होना भी चाहिए और इस बात से हमें चकित नहीं होना चाहिए। अंत में परमेश्वर को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता और परमेश्वर का पूरी रीति से विवरण नहीं दिया जा सकता। अंत में उसका सार में वह समझ से बाहर है और यह ठीक है। हम परमेश्वर नहीं है और हम उसके विषय में हर बात को हमारे लिए समझना जरूरी भी नहीं है। पिता पूरी रीति से परमेश्वर है, पुत्र पूरी रीति से परमेश्वर है, पवित्र आत्मा पूरी रीति से परमेश्वर है, फिर भी वह एक परमेश्वर है। त्रि एकता का रहस्य है। हमारी मदद करे कि हम यूहन्ना जैसे पदों को समझ सकें। फिर से अपनी बहस को खत्म करते हैं जैसे वह अक्सर करता है। वह उन्हें एक तीखी टिप्पणी के साथ छोड़ कर जाता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। यीशु महान मैं हूं है। जब परमेश्वर ने अपने आप को निर्गमन 3 अध्याय में जलती हुई जाड़ी में ही मूसा पर प्रकट किया, मूसा ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, और यदि मैं तेरे लोगों के पास जाऊंगा वह जानना चाहेंगे तू कौन है। और इस जलती हुई जाड़ी में से परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। और जहीं से हम यहवे अर्थात यहोवा शब्द मिलता है। परमेश्वर बहुत ही पवित्र है। यह परमेश्वर के बहुत ही ज्यादा पवित्र और व्यक्तिगत नामों में से एक नाम है। और जब यीशु ने यहूदियों को कहा इसे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, वह उसी वक्त अच्छी तरह से समझ गए कि वह क्या कह रहा है। इसलिए उन्होंने अपने पत्थर उठाए कि वह उसे मार डालें, क्योंकि उन्होंने देखा वह तो पागल है और वह निंदा कर रहा है, क्योंकि वह निर्गमन 3 अध्याय का महान मैं हूं बनने का दावा कर रहा है और वह यहवे होने का दावा कर रहा है, जिसका विवरण यूहन्ना 1:1 में दिया गया है। आदि में वचन था। यूहन्ना का यीशु के लिए वाक्य है। यीशु परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर था। यह ईश्वरता का एक दावा है। फिर से यूहन्ना 1:1 में यूहन्ना यह नहीं कह रहा कि सब कुछ जो है परमेश्वर है वह यीशु है। यीशु में ईश्वरता में कुछ और भी है। फिर भी यूहन्ना 1:1 कह रहा है यीशु पूरी तरह से परमेश्वर है। और यही बात यहोवा विटनेस वाले नहीं समझ पाते, क्योंकि ग्रीक भाषा को वह नहीं जानते, यूनानी भाषा भी नहीं जानते हैं। यही बात यहोवा विटनेस वाले नहीं समझते क्योंकि वह यूनानी भाषा को नहीं जानते। और उन्हें अपने आप को यह बात बताने ना दो। उनको आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जब भी वह आपका उनके साथ विचार विमर्श हो तो आप उन्हें 18 आयत की ओर लेकर जाएं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। आप इस बात को देख सकते हैं। मनुष्य भाषा परमेश्वर के सत्य को पूरी तरह से प्रकट कर सकती है। इसीलिए अक्सर ही यीशु जैसे विचारों को पेश करते हैं जो कि ऐसे लगता है एक दूसरे के विरोध में टकराते हैं, फिर भी वे वास्तविक हैं। यह परमेश्वर कौन है जो पिता की गोदी में है? वह पिता तो नहीं, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही पिता की गोद में है। तो फिर वह परमेश्वर यीशु है। यीशु जो परमेश्वर है उसी ने परमेश्वर को देखा है, उसी ने पिता को देखा, इसीलिए वह पिता को जानता है। अब आप 18 आयत की ओर लेकर जाएं, वहां आप अकेले छोड़ जाएंगे। इसलिए यूहन्ना 20:28 आयत बहुत ही महत्वपूर्ण अंगीकार है। वह ना सिर्फ थूमे के होठों का अंगीकार है, परंतु यह यूहन्ना की पूरी पुस्तक का एक अंतिम अंगीकार है। जब थूमा ने जी उठे प्रभु को देख लिया, तब उसके हाथों और कीलों के निशानों को देख लिया, तो वह नीचे गिरकर पुकारने लगा। याद रखें, यह एक ही परमेश्वर को मानने वाला यहूदी, और वह पुकारता, वह कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो मैं इस बात को समझ रहा कि लोग मुर्दा में से जीव नहीं उठते हैं, सिर्फ परमेश्वर ही मुर्दों में से जी उठता है। तो इसलिए थोमा का अंगीकार, आपके होठों का अंगीकार भी होना चाहिए, मेरे होठों का भी अंगीकार होना चाहिए, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे बॉस, मेरे परमेश्वर। यह धार्मिक जिज्ञासा से ज्यादा कुछ और भी है। त्रिएकता के मुद्दे के ऊपर धार्मिक जिज्ञासा से कुछ और भी है। यह इसलिए क्योंकि यीशु कहते हैं कि वह महान मैं हूं है, और वह यूहन्ना 6:35 जैसे पदों में कहते हैं। यह इसलिए है क्योंकि यीशु ने कहा मैं महान मैं हूं, और वह यह भी कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। क्योंकि यीशु महान मैं हूं है, वह कह सकता है कि जगत की ज्योति मैं हूं और मैं ही सत्य का स्रोत हूं। क्योंकि यीशु महान मैं हूं है, वह कह सकता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। यह वह परमेश्वर है जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे सकता है। क्योंकि यीशु महान मैं हूं है, वह कह सकता है मैं पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं, और वह जीवन का स्रोत जीवन से पहले और बाद में है। क्योंकि यीशु महान मैं हूं है, वह कह सकता है कि वही एकमात्र पोषण का स्रोत है। क्योंकि यीशु महान मैं हूं है, वह कह सकता है त्रिएकता की शिक्षा दिमागी धार्मिक जिज्ञासा से ज्यादा है। यीशु की ईश्वरता की शिक्षा सिर्फ यूहन्ना में ही नहीं है। यूहन्ना में मसीह की ईश्वरता की शिक्षा देखने के बाद यह वास्तविकता कि वह परमेश्वर है, और यह यूहन्ना से बहुत स्पष्ट, और ज्यादातर हम यहीं जाते हैं। परंतु जब एक बार हम समझ लेते हैं, यह हमारी नए नियम को समझने भी सहायता करता है। यह वास्तविकता कि यीशु परमेश्वर है, यह हमारी यह समझने में सहायता करता है कि यीशु पापों को माफ करने का दावा करता है, जबकि सिर्फ परमेश्वर ही पाप माफ कर सकता है। क्योंकि यीशु महान मैं हूं है, हम समझते हैं कि क्यों वह आदर महिमा और आराधना का दावा करता है जो सिर्फ परमेश्वर की है। क्योंकि यीशु महान मैं हूं है, वह विवरण देता है कि क्यों पुराने नियम की आयतें नए नियम में यीशु पर लागू होती हैं, क्योंकि वह परमेश्वर है, जैसे पदों का विवरण देता है जिसे हमने देखा है। कुलसियों 1:15-20 का विवरण देता है, जहां पर हम लिखा है परमेश्वर की भरपूरी यीशु में वास करती है। रोमियों 6:5 का विवरण, तीतस 2:13 का विवरण है कि हम धन्य आशा की बाट जो रहे हैं, जो अपने मुक्तिदाता हमार महान परमेश्वर प्रभु यीशु के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम यूहन्ना 10:30 का प्रश्न वह नहीं है जो वास्तव में इसका अर्थ है, परंतु क्या आप विश्वास करते हैं। मैं जानता हूं कि इस कमरे में बहुत से लोग सिर हिलाकर कहेंगे हाँ मैं यकीन से विश्वास करता हूं, और फिर भी मैं सप्ताह में हैरान हो जाता हूं कि हम सच में विश्वास करते हैं। क्या आप सच में यह विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। यदि मैं वास्तव में यह विश्वास करता हूं कि यीशु ही परमेश्वर है, तो मैं चकित होता हूं कि क्या मैं उसके खंड बनाऊंगा जितने मैं बनाता हूं। यदि मैं वास्तव में यह विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर है, तो क्या मैं कहूंगा आप जानते हैं आप रविवार को ले लें परंतु मेरा जीवन सोमवार से शनिवार तक मुझे दे दें। यदि मैं वास्तव में यह विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर है, तो क्या मैं उसका आज्ञा पालन नहीं करूंगा। यीशु ने कहा हमें एक दूसरे के बोझों को उठाना चाहिए, फिर भी हमारी योग्यता यह है कि हम अपने भाई बहनों से दूर रहते हैं और हम एक दूसरे का बोझ नहीं उठाते हैं। यदि मैं वास्तव में यह विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर है, तो क्या हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। मुझे इफिसियों 4:26 जैसी आयतें मिलती हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वर्ण भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को पास उसके पास कुछ देने को हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यदि मैं वास्तव में यह विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर है, और यीशु परमेश्वर अपने प्रेरित के द्वारा मुझे कह रहा है अपना मुख बंद रखो यदि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्या मैं लोगों का न्याय करूंगा, क्या मेरे पास अभी भी आलोचना वाला आत्मा होगा, क्या मैं अभी भी अपर्याप्त जानकारी के साथ बोलूंगा। मैं हैरान होता हूं कि क्या मैं यह करूंगा। मैं हैरान होता हूं यदि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अच्छा चरवाहा है जिसने अपना प्राण मेरे लिए दे दिया है, तो क्या मैं अपने पखंड में चलता रहूंगा, क्या मैं धार्मिक बातों के साथ धोखे में अपने चेहरे के ऊपर मखौटा डालकर रखूंगा। मैं हैरान होता हूं। सप्ताह में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं आप अपने मन की आंखों से सोचें और सृष्टि में सबसे महान वस्तु क्या है। मैं संदेह करता हूं कि आप अलग अलग चित्रों के साथ आएंगे, मैं अलग चित्रों के साथ। मुझे हबल टेलीस्कोप साइट के ऊपर जाना पसंद है। मैं हर रोज वहां जाता हूं और प्रतिदिन वहां एक चित्र होता है। वहां जो लिखा है वह नास्तिक और प्रतिकारिक है, परंतु यह चित्र इस संसार से बाहर का है। यह सैम्ब्रो आकाश गंगा या टोप जैसी दिखती है। यह M104 है और यदि यह महत्वपूर्ण है, यह लाखों तारों का समूह है। वास्तव में जो बहुत सी ज्योतियां आप देख रहे हैं वह तारों के समूह हैं। यह अकेले तारे नहीं, आकाश गंगा के चारों ओर जो अंधेरी अंगूठी है वह स्पेस कनेज है। खंडोलवादियों ने यह कनेज कभी नहीं देखी है। वह सोचते हैं कि प्रत्येक कण शायद हजारों इंच दूरी पर है, परंतु फिर भी इतने के यह कनेज एक मजबूत चट्टान की दीवार बना देती है। यह सूर्य के चारों ओर नहीं है, यह ग्रह के चारों ओर नहीं है, यह सोलर सिस्टम नहीं है, यह आकाश गंगा के चारों ओर है और यह 500 लाख लाइट वर्ष दूरी पर है। सोबरो आकाश गंगा M104 यीशु मसीह मेरे अच्छे चरवाहे की महिमा को दिखाती है, जिसने अपने प्राण मेरे लिए दे दिए और जो मेरे बोझों को उठाता है और सिर्फ वही बोलता है जो अनुग्रह देता है। परंतु इसकी तुलना में एक छोटे से जानवर के विषय में सोचें, शायद एक कीड़े के विषय में, और वह मैं हूं। सैंब्रो आकाश गंगा मेरे मुक्तिदाता की महिमा की घोषणा करती है और मैं एक कीड़ा हूं। फिर भी यह तुलना भी फेल हो जाती है, इसलिए नहीं कि मैं एक कीड़े से कम हूं, परंतु क्योंकि यीशु परमेश्वर है और वह आकाश गंगा से भी बड़ा है, जो उसने हजारों की संख्या में बनाए हैं। वह किसी भी वस्तु से बड़ा है जिसे हम देख सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। फिर भी हम युद्ध करते हैं, हम उसे छोटा बनाते हैं, हम उसे नकार देते हैं, हम उससे बहस करते हैं कि वह क्या बात कर रहा है, क्या हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है। मैं जानता हूं यह इतना साधारण नहीं है, यह वास्तविकता कि आप और मैं परमेश्वर के साथ बहस करते हैं। हर बार जब हम पाप करते हैं, हम सैंब्रो आकाश गंगा के परमेश्वर के साथ बहस करते हैं। जब भी हम बहस करते हैं तो हम अपने जीवन में पाप की अविश्वसनीय शक्ति को देख सकते हैं, एक पाप जो हमें अंधा कर देता है। हम परमेश्वर के साथ बहस करें। कीड़े अपनी बाजू को निकालकर आकाश गंगा के परमेश्वर से कहते हैं, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तुम मुझे नहीं बता सकते मुझे कैसे बात करना है, तुम मुझे नहीं बता सकते मुझे क्या करना है। और हमारी ऐसी बहस परमेश्वर के साथ होती है, और यदि यह कुछ और नहीं दिखती है तो यह पाप की शक्ति तो जरूर दिखती है जो हमारे धोखे वाले हृदय में मिली हुई है। यह शक्ति किसी भी बात से ज्यादा है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यह वास्तव में किसी भी शक्ति से ज्यादा है जिसके ऊपर हम अपनी शक्ति से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी जीवन एक यात्रा है और हम इस पथ पर एक साथ चलते रहते हैं। हम अपने भाई और बहनों के साथ चलते हैं, हम अपने अच्छे चरवाहे के साथ चलते हैं, हम यीशु के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। और जैसे हम चलते हैं हम गलती करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा किए जाते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम बढ़ते हैं। और जैसे हम बढ़ते हैं तो हम यीशु परमेश्वर के विषय में अपनी समझ में बढ़ते हैं और हम उसे और भी ज्यादा देख पाते हैं जैसा कि वह है। जबकि उसी समय हम अपने पाप की गंदगी और शक्ति को देख सकते हैं जैसे हम इस यात्रा में एक साथ चलते हैं, फिर से इस बात को जान पाते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। यह कोई गलील का नबी नहीं है जो गलील की झील के किनारे चलकर लोगों को शिक्षा देता था। वह सिर्फ अच्छा आदमी ही नहीं था, वह देह धारण करके आया परमेश्वर था। जैसे हम इसके विषय में इसके ऊपर और ज्यादा सीखते हैं तो हम इसकी और भी गहराई समझ जाते हैं। उदाहरण के रूप में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मांगते हैं, जब हम ढूंढते हैं, हम सृष्टि के परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं जो सब आकाश गंगा का वास्तविकता का परमेश्वर है। और जब हम चोट खाते हैं और हम यीशु के आगे जाते हैं जो कि महान मैं हूं है, जो कि जीवन को संभालने वाला है, जब आप और मैं अकेले हैं, हम समझते हैं कि यीशु आकाश गंगा का परमेश्वर है, हमारे बिस्तर के पास बैठकर हमें संतावना देता है। जब हम पाप करते हैं तो हम यह समझते हैं कि वह परमेश्वर है जिसने अपने प्राण को दे दिया एक कीड़े के लिए आकाश गंगा। और जब हम अर्थ और महत्व को ढूंढते हैं तो हम इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि यीशु महान मैं हूं है जो कि परमेश्वर है। सच में यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं।